लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं पवित्र राखबूत के मिस्सा में संत पापा फ्रांसिस का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजा घर में राखबूत का मिस्सा अर्पित करते हुए चालीसा काल की शुरुआत की। मिस्सा बलिदान के अपने प्रवचन में संत पापा ने कहा, हम चालीसा काल की यात्रा आज नबी योवेल के वचनों से शुरू कर रहे हैं। वे हमें राह चलने हेतु दिशा निर्देश देते हैं। हम एक निमंत्रण को सुनते हैं जो ईश्वर के हृदय से आता है, जो हमें अपनी खुली बाहों और प्रतीक्षा भरी निगाहों से कहते हैं,
Ritornate a me con tutto il cuore. Ritornate a me. La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio.
अपने पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। चालीसा ईश्वर की ओर लौटने की एक यात्रा है। कितनी बार अपने कार्यों में या उदासीनता में हमने उन्हें कहा है, प्रभु मैं बाद में आऊंगा, मैं आज नहीं आ सकता, लेकिन मैं कल से अपनी प्रार्थना शुरू करते हुए दूसरों के लिए कुछ करूंगा। ईश्वर हमारे हृदय में आज पुकारते हैं। इस जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें करना है और हम बहाना करते हैं, लेकिन यह ईश्वर के पास लौट आने का उपयुक्त समय है। ईश्वर हमें कहते हैं कि अपने पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। चालीसा एक यात्रा है जो हमारे पूरे जीवन, हमारे अस्तित्व को अपने में समाहित करता है। यह हमारी राहों पर पुनः विचार करने का समय है, उस राह को खोजने का जो हमें अपने निवास की ओर ले चलता है और हमारे संबंध को ईश्वर के साथ पुनः मजबूत करने में मदद करता है, जिन पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। चालीसा अपने में छोटा मोटा त्याग करने का समय नहीं, वरन यह हमारे लिए आत्म मंथन करने का समय है कि हमारा हृदय किस ओर झुका है। हम अपने आप से पूछें, मेरे जीवन का दिशा निर्देशक मुझे किस ओर ले चल रहा है, ईश्वर की ओर या स्वयं मेरी ओर? क्या मैं ईश्वर को खुश करने हेतु जीता हूँ या दिखावे, प्रशंसा और प्रगति पाने हेतु? क्या मेरा हृदय कमजोर है जो एक कदम आगे बढ़ता और फिर पीछे की ओर लौट जाता है? क्या मैं थोड़ा यीशु से प्रेम करता हूँ और थोड़ा संसार से, या क्या मेरा हृदय ईश्वर के प्रति निष्ठावान है?
Sto bene con le mie ipocrisie, ho lotto per liberare il cuore dalle doppiezze e dalla falsità che lo incatenano.
क्या मैं अपनी आडंबरी जीवन से खुश हूँ, या क्या मैं अपने हृदय को नकलीपन और झूठेपन के बंधन से मुक्त करने हेतु कार्य करता हूँ? चालीसा की यात्रा हमारे लिए गुलामी से मुक्ति की ओर जाना है। ये 40 दिन हमारे लिए 40 वर्षों की ओर इंगित कराते हैं, जहाँ ईश प्रजा अपने देश लौटने के पूर्व मरुभूमि में भटकती रही। मिस्र देश को छोड़ना उनके लिए कितना कठिन था। उस यात्रा के दौरान एक तरह का प्रलोभन था, जहां वे वापस लौटने को उतारू थे। अपनी पुरानी यादों में डूबे इस मूर्ति या उन देवी देवताओं में खोए थे। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। ईश्वर के पास लौटने के क्रम में हम अपने को कई अनुचित अशक्तियों में फंसा पाते हैं, जो हमें पाप के बंधनों में फंसाए रखता है, जहां हम धन और अपने रूप रंग के झूठे असंतुष्टि से कुंठित रहते हैं। इस यात्रा में चलने हेतु हमें दिग्भ्रमित करने वाली झूठी बातों का परित्याग करना होगा। हम अपने आप से पूछें, कि कैसे हम ईश्वर के पास लौटते हैं। हम ईश्वर के वचनों में ही अपने लिए दिशा निर्देश को पाते हैं। हम उड़ाव पुत्र के बारे में विचार करते हुए अपने में यह सोच सकते हैं कि यह हमारे लिए भी पिता के पास लौटने का समय है। उस पुत्र की भांति हमने अपने घर की खुशबू को खो दी है। हमने अपने कीमती धन संपत्ति को व्यर्थ की चीजों में लुटा दिया है और हम अपने को खाली हाथ नाखुश हृदय पाते हैं। हम गिर गए हैं मानो छोटा बालक चलने सीखने के क्रम में बार बार गिर जाता है, जिससे पिता के द्वारा बारंबार उठाने की आवश्यकता होती है। यह पिता की क्षमाशीलता है जो हमें अपने कदमों पर खड़ा करता है। ईश्वर की दया पाप स्वीकार हमारे लिए इस यात्रा में प्रथम कदम है।
Abbiamo bisogno di ritornare a Gesù, di fare come quel lebbroso risanato che tornò a ringraziarlo.
हमें उस कोढ़ी की तरह यीशु के पास लौटने की जरूरत है जो अपनी चंगाई पर उन्हें धन्यवाद देने हेतु लौटा। यद्यपि दसों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन सिर्फ एक को ही मुक्ति मिली, क्योंकि वह यीशु के पास लौटकर आया। हम सभी आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं और हम स्वयं में चंगाई प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सबों में घर कर गई बुराई है जिसे हम अपने में उखाड़ नहीं सकते हैं। हम अपने में भय से ग्रसित हैं कि हम अकेले विजयी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें उस कोढ़ी का अनुसरण करने की जरूरत है जो यीशु के पास लौटकर आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। हमें यीशु की चंगाई की जरूरत है। हमें अपने घावों को उनके सामने प्रस्तुत करते हुए कहना है, यीशु, मैं आपकी उपस्थिति में हूँ, मेरे पापों के साथ, अपने दुखों के साथ। आप ही चिकित्सक हैं, आप मुझे मुक्त कर सकते हैं, मेरे हृदय को चंगा कीजिए। हम पुनः पवित्र आत्मा की ओर लौटने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं।
La cenere sul capo ci ricorda che siamo polvere e in polvere torneremo.
हमारे माथे का राख हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर भी हमारे इस राख से यीशु जीवन उत्पन्न करते हैं। अतः हम अपने जीवन को मिट्टी की खोज में ना जिएं, उन चीजों के पीछे ना भागें जो आज हैं कल नष्ट हो जाएंगे। आइए हम पवित्र आत्मा की ओर लौटें जो हमें जीवन देते हैं, उस आग की ओर जो हमें राख को पुनर्जीवित करते हैं। आत्मा की ओर लौटते हुए हम स्तुति की आग को पुनः प्राप्त करें। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, ईश्वर की ओर हमारी यात्रा इसलिए संभव होती है क्योंकि उन्होंने हमारी ओर पहला कदम बढ़ाया है।
Prima che noi andassimo da lui, lui è sceso verso di noi.
इसके पहले कि हम उनकी ओर आएं, वे हमारे लिए स्वर्ग से उतरकर आए। वे हमारे आगे आते हैं, वे हमसे मिलने आते हैं। हमारे खातिर वे अपने को नम्र बनाते जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वे पापों को अपने ऊपर लेते और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। संत पौलुस इस भांति हमें कहते हैं, हमारे खातिर ईश्वर ने उन्हें पाप में डाला। वे हमें नहीं छोड़ते वरन हमारे साथ चलते हैं। उन्होंने हमारे पापों को, हमारी मृत्यु को गले लगाया। हमें अपनी यात्रा में उन्हें अपना हाथ पकड़कर लेने देना है। पिता जो हमें अपने पास बुलाते हैं, वे घर छोड़कर हमें खोजने आते हैं। वे हमारे खातिर क्रूस पर दुख सहते हैं। पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। अतः आज का पाठ हमें कहता है, ईश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए। हमारी यात्रा हमारी शक्ति में निहित नहीं है। हृदय परिवर्तन जो हमारे कार्यों और व्यवहारों में अभिव्यक्त होता है, केवल तब संभव है जब ईश्वर हम में कार्य करते हैं। हमें उनकी ओर हमारी योग्यता या गुण नहीं लाते, वरन उनकी कृपा ऐसा करती है। यीशु इसे सुसमाचार में कहते हैं कि हमें धर्मी वह नहीं बनाता जिसे हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बल्कि पिता से हमारा निष्ठापूर्ण संबंध हम में ऐसा करता है।
L'inizio del ritorno a Dio è riconoscersi bisognosi di lui, bisognosi di misericordia.
ईश्वर की ओर लौटने की शुरुआत तब होती है जब हम उनकी जरूरत और करुणा को अपने लिए पहचानते हैं। यही सही मार्ग है, नम्रता का मार्ग। आज हम शीश नवाते हुए राख ग्रहण करते हैं। 40 के अंत में हम इससे भी अधिक झुककर अपने भाई बहनों के पैरों को धोएंगे। 40 नम्रता में अपने अंदर प्रवेश करना और दूसरों की ओर बाहर जाना है। यह इस बात का अनुभव करना है कि मुक्ति महिमा की ओर चढ़ना नहीं अपितु प्रेम में उतरना है। यह अपने में नम्र बनना है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम अपनी यात्रा में भटक जाएंगे। आइए हम यीशु के क्रूस, ईश्वर के शांति सिंहासन के सामने खड़े हों। आइए हम प्रतिदिन उनके घावों पर चिंतन करें। उन घावों में हम अपने खालीपन को पहचानते, अपनी त्रुटियों, पाप के कारण अपने घावों और अपने चोटिल अनुभवों को पाते हैं। उनके घावों को हमारे कारण कुरेदा गया और उन घावों के द्वारा हम सभी चंगे किए गए हैं। उन घावों का चुंबन करते हुए हम इस बात का अनुभव करेंगे कि अपने जीवन के बड़े पीड़ादायक घावों में ईश्वर अनंत करुणा में हमारा इंतजार करते हैं, क्योंकि वहाँ उस परिस्थिति में हम अपने को अति संवेदनशील पाते। वे उस परिस्थिति में हमसे मिलने आते हैं। वे हमें अपने पास लौट आने का निमंत्रण देते हैं।
जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर उसका है वो मेरे गुनाह का है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया राख बुधवार के दिन से 40 काल में प्रवेश करती है। संत पापा ने राख बुधवार को 2 ट्वीट कर सभी कैथोलिकों को अपने विश्वास को नवीनीकृत करने और मसीह में भाई बहन बनने हेतु प्रेरित किया। पहले ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, मन परिवर्तन के इस काल के दौरान हम अपने विश्वास को नवीनीकृत करते हैं, आशा के जीवित जल से आकर्षित होते हैं और खुले दिल से ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हैं जो हमें मसीह में भाई बहन बनाता है। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, अब हम अपनी 40 यात्रा को शुरू कर रहे हैं जो नबी जोएल के शब्दों के साथ शुरू होता है। वे उस मार्ग को इंगित करते हैं जिसका हम अनुसरण करते हैं। हम एक निमंत्रण सुनते हैं जो ईश्वर की ओर से आता है, पूरे मन से मेरे पास लौटो। 40 ईश्वर की ओर से वापसी की एक यात्रा है। संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को प्रकाशित मोतू प्रोप्रियो न्याय के क्षेत्र में संशोधनों के परिचय में वाक्यों में कमी, सामुदायिक सेवा और स्वैच्छिक कार्य के एक कार्यक्रम पर सहमत होने की संभावना और प्रतिवादी की ओर से वैध बाधा के मामलों में परीक्षणों का निलंबन प्रदान करते हैं। नए नियम वाटिकन राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली को अद्यतन करते हैं और समय की जरूरतों का जवाब देने के लिए मानदंडों का पालन करते हैं तथा अपराधियों के पुनर्वास के उद्देश्य से दंड प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं। संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं, हाल ही में आपराधिक न्याय के क्षेत्र में जो भी अपवाद सामने आए हैं उन विभिन्न क्षमताओं वाले लोगों की गतिविधियों पर परिणामी नतीजों के साथ वर्तमान मूल और प्रक्रियात्मक कानून को फिर से देखने के लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है जो कुछ मामलों में मार्गदर्शक सिद्धांतों और क्रियात्मक समाधानों से प्रभावित होता है जो अब पुराने हो चुके हैं। इन कारणों से संत पापा ने कानून के 3 नए लेख प्रकाशित किए हैं। पहला लेख दंड संहिता में परिवर्तन करता है और पहले से ही दोषी ठहराए गए अपराध अपराधियों के लिए 45 से 120 दिनों की सजा को कम करता है जिन्होंने अपनी सजा के निष्पादन के दौरान इस तरह से व्यवहार किया है जैसे कि उनके मानने के लिए पश्चाताप और उपचार एवं पुनर्वास के कार्यक्रम में लाभदायक रूप से भाग लिया है। जब सजा प्रभावी हो जाती है तो अपराधी को न्यायाधीश के साथ समझौता करना होगा और वह उपचार और पुनर्वास कार्यक्रम जिसमें विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का संकेत होता है अपराध के परिणामों को टालने या कम करने के लिए शुरू करेगा। अंत में नुकसान की क्षतिपूर्ति, मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए मुआवजा देगा। दोषी व्यक्ति सार्वजनिक हित में काम के प्रदर्शन या सामाजिक महत्व की स्वैच्छिक गतिविधियों का प्रस्ताव कर सकता है। प्रचार करने के उद्देश्य से आचरण जहां संभव हो आहत व्यक्ति के साथ मध्यस्थ करेगा। पिछला कानून इसमें से कोई भी पहल प्रदान नहीं करता था। दूसरा लेख दंड प्रक्रिया के लिए संहिता में संशोधन करता है, सुरक्षा उपायों को बनाए रखता है, जबकि तथाकथित अनुपस्थिति में मुकदमे का एक विशेष रूप को समाप्त कर देता है जो वाटिकन संहिता में अभी भी मौजूद था। अगर आरोपी पेश नहीं हुआ तो बचाव के लिए गवाही द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज के आधार पर परीक्षण होता था। अब हालांकि यदि प्रतिवादी को वैध बाधा के बिना सुनवाई में भाग लेने से मना किया जाता है तो सामान्य परीक्षण आगे बढ़ेगा। प्रतिवादी को अपने बचाव पक्ष के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। यदि दूसरी ओर प्रतिवादी सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है तो यह साबित हो जाता है कि वह एक वैध और गंभीर बाधा के कारण वहां उपस्थित नहीं हो सका है या यदि पागलपन के कारण वह अपना बचाव करने में असमर्थ है तो एकल न्यायाधीश को इस मुकदमे को निलंबित करना होगा। तीसरा लेख वाटिकन सिटी राज्य की न्यायिक प्रणाली के कानून CCCLI में संशोधन और पूरक है। यह निर्धारित करता है कि सेवानिवृत्ति के समय साधारण मजिस्ट्रेट वाटिकन नागरिक के लिए सभी अधिकार, सहायता, कल्याण और प्रदान की गई गारंटी को बनाए रखेंगे। यह अनुच्छेद रेखांकित करता है कि न्याय के प्रवर्तक का कार्यालय न्याय के तीन स्तरों में सरकारी वकील के कार्यों और कानून द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्यों में स्वायत्तता और स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। उधर निम्न आय वाले देशों में COVID-19 टीकों, आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आपूर्ति वितरण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से यूनिसेफ के मानवतावादी हवाई पहल के लिए कम से कम 10 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने हस्ताक्षर किया। मंगलवार को जारी एक बयान में इस अभियान की घोषणा करते हुए यूनिसेफ ने कहा कि मानवीय पहल दीर्घकालिक रूप से अन्य मानवीय और स्वास्थ्य संकटों के लिए वैश्विक रसद तैयारी तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यूनिसेफ ने कहा कि यूनिसेफ की मानवतावादी हवाई पहल कोवैक्स सुविधा के समर्थन में 100 से अधिक देशों को कवर करने वाली एयरलाइनों को साथ लाता है जो COVID-19 टीकों के सामान पहुंच के उद्देश्य से एक वैश्विक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। कोवैक्स सुविधा सूचक और पहले दौर के आवंटन की योजना के तहत 2021 की पहली 6 माही में 145 देशों को अपनी आबादी के लगभग 3% का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त खुराक प्राप्त होगी। यूनिसेफ आपूर्ति प्रभाग के निदेशक एटलेवा कादिली ने कहा, हम COVID-19 टीकों के वितरण के लिए यूनिसेफ मानवीय हवाई पहल में शामिल होने के लिए इन एयरलाइनों के आभारी हैं। जीवन रक्षक आपूर्ति, सुरक्षित और कुशल परिवहन, बच्चों और परिवारों के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।